ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਉਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਬੌਨ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ 416-433-9191 416-433-9191
बल्ले भाई बल्ले, मैं तो बन गई ओनर अपनी ट्रकिंग कंपनी की क्योंकि मैंने ली थी ट्रेनिंग उस कंपनी से जिसके हैं 500 से ज्यादा 5-star गूगल रिव्यूज। नाम है मेज कंसल्टेंसी। तो अगर आपको भी ट्रक डिस्पैचर या फ्रेट ब्रोकर स्पेशलिस्ट बनना है तो आज ही ट्रेनिंग के लिए मेज कंसल्टेंसी को कॉल करें। नंबर है 9058262919, दैट इज 9058262919। बल्ले बल्ले।
आदमी बुलबुला है पानी का,
द पोएट, द राइटर, द लेजेंड गुलजार, लाइव इन कॉन्सर्ट अलॉन्ग विद टॉप बॉलीवुड सिंगर्स।
दिल ढूंढता
नाम भूल जाएगा।
फ्राइडे जुलाई 15th एट प्रेस्टिजियस रॉय थॉमसन हॉल, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, डोंट मिस इट। गुलजार्स इजाजत।
फोर टिकट्स कॉल 416-854-2923 416-399-1540।
जी
हाँ जी मजीद भाई, एसोसिएटेड प्रेस की आज की न्यूज है और ये जो कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप रेस है इन इंग्लैंड, नॉट हियर, इन इंग्लैंड, वो बहुत ज्यादा वो उसको ब्रूज्ड होती जा रही है क्योंकि अब जो है एक दूसरे के ऊपर चैटके लगने लगे हैं, वो करने लगे हैं। ऋषि सुनक को बेसिकली तो लीड हासिल है लेकिन लोग इसको ज्यादा, जो कंजर्वेटिव जो है तबका थोड़ा इसको पसंद नहीं कर रहा है क्योंकि जाहिर अपने मुल्क का वो गोरा ही देखना चाहते होंगे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि ऋषि सुनक ही जीतेगा। बहरहाल एनीवेज, ये जो फर्स्ट वीक गुजरा है इसके अंदर अब जो है, अब ये बस एक और आज निकल गए हैं तो पांच ही रह गए हैं इसके अंदर। पेनी मॉर्डॉन्ट जो है जूनियर गवर्नमेंट मिनिस्टर जो है, इतना तो वो पब्लिक में जानी नहीं जाती है, ये जो ग्लासेस में, अगर वो जो हमारे देख रहे हैं टीवी देख रहे हैं उनको नजर आएंगे, जो ग्लासेस में लेडी है ये वो है पेनी मॉर्डॉन्ट, लेकिन इन्होंने जो है ये बन सकती हैं यूके की प्राइम मिनिस्टर
क्योंकि
जी ये सेकंड पे है, ये काफी पॉपुलर होती जा रही है क्योंकि ये शी इज लाइक्ड बाय बोथ साइड्स वेरी मच जो ये हैं। हालांकि लिज ट्रूस जो कि हमारा टीवी देख रहे हैं वो देखेंगे जो पहले नंबर पे हैं वो काफी आगे थी, लेकिन अब जो हैं इनकी तरफ जरा झुकाव थोड़ा आता जा रहा है।
आई थिंक पेनी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर,
मुझे लगता है इसके और ऋषि सुनक के बीच में ही ज्यादा वो है। अच्छा, अब क्या हुआ है कि फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रूस जो हैं उनके ऊपर भी काफी सारे एतराज लोगों के आ रहे हैं कि ये बड़ी हॉट हेडेड हैं, बड़ी ये हैं और ये जो हैं ये शी यू नो शी लैक्स कमिटमेंट एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो कहती है जी कि हमको यूनिटी के साथ आगे चलना चाहिए, हमको ऐसे इतना ज्यादा जो है वो अपने पर्सनल उसके ऊपर वेंडेटा को सामने नहीं लेके आना चाहिए। जेकब रीस मॉग जो के कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये जो सुनक साहब हैं इनको सोशलाइज्ड कहा है और इनको कहा है जी कि ये तो बिलियनर्स के साथ फिरता है और ये तो बिलियंस की बातें करता है और अभी जिस वक्त पेंडेमिक भी आया था तो इसने तो पैसे की कभी फिक्र ही नहीं की, इसने इतने बेतहाशा पैसे खर्च कर दिए हैं, तो ऐसे बंदे को जो इतना रेकलेसली पैसे स्पेंड करता है उसको आप कैसे अपने का प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। इसके अलावा जो एक्स ब्रेक्सिट निगोशिएटर हैं डेविड फ्रॉस्ट, उन्होंने मॉर्डॉन्ट के बारे में, ये पेनी मॉर्डॉन्ट जो है इनके बारे में कहा है जी कि ये इनकी जो सारी कुछ ये करती रही हैं, काम करती रही हैं, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं था जिस वक्त ये मेरे डिपार्टमेंट में थी तो इसीलिए इनको तो मैंने शिफ्ट कर दिया था, तो इनको तो कोई इतना नो हाउ नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर पेनी मॉर्डॉन्ट ने भी कहा है कि आपको एक दूसरे के ऊपर मड स्लिंगिंग करने के बजाय ना एक पॉजिटिव आपको कैंपेन चलानी चाहिए। अब हर किसी की जो है ना कोई स्टोरी है तो अब देखें क्या होता है। मुझे लगता है कि मुकाबला इन्हीं के बीच में, माजिद भाई, ये पेनी मॉर्डॉन्ट के बीच में और ऋषि सुनक की, जो बाकी के लोग नजर आ रहे हैं ना दे आर मोर और लेस आउट ऑफ द रेस नाउ बिल्कुल, क्योंकि 40-40% अगर इनको वो है या 30% या 25% दे डोंट स्टैंड अ चांस, क्योंकि 87% या 80% जिनको सपोर्ट हासिल है कंजर्वेटिव पार्टी की वही है। तो ये इस वक्त मुझे जो दो लग रहे हैं वो वही लग रहे हैं, एक तो पेनी एक ऋषि,
exactly.
ये दोनों जो हैं ये सामने हैं। तो बहरहाल ये काफी एक दूसरे के ऊपर जी ये लड़ाई झगड़े के ऊपर वो कर रहे हैं। अच्छा जनाब, आज की जो बिग ब्रेकिंग न्यूज थी सारे इंटरनेशनल प्रेस में, जो कि हमारी भी आपको वेबसाइट पे ब्रेकिंग न्यूज में नजर आई होगी, श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर थे अभी तक, जो क्राइसिस में जिनको किया था इन्होंने चूज किया था क्योंकि और तो कोई प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार नहीं था, मुल्क के इतने हालात खराब थे, रानिल विक्रमसिंघे, उनको जनाब आज इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया है. और क्योंकि ये जो गोटाबाया राजापक्षे साहब थे, ये तो आपको पता ही है कि ये भाग गए हैं मुल्क से, तो इन्होंने वैसे पहले अनाउंस किया था कि जी हमें एक हफ्ता भी लगेगा प्रेसिडेंट चूज करने में. लेकिन आज चूंकि हंगामे बहुत बढ़ गए थे, हालांकि आज कुछ ठंडे हुए हैं कोलंबो के अंदर, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, एक प्रेसिडेंट जो है वो फिगर सामने आनी चाहिए. और इनको आज बनाया गया है. और पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं महिंद्रा यप्पा अबे वर्धना, उन्होंने भी कहा है कि हम फॉरेन ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल प्रोसेस चलाएंगे और नए प्राइम मिनिस्टर की तरफ हम जाएंगे. ये अभी इंटरिम के अंदर है, पार्लियामेंट जिसको भी अप्रूव करेगी आने वाले दिनों में उसको अब हम फिर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे मुल्क के अंदर जो क्राइसिस हैं उसको हम खत्म करें. न्यूयॉर्क टाइम्स की आज जो ये रिपोर्ट है, और आप देखें ना फ्रीडम ऑफ प्रेस जहां पर होती है माजिद भाई, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है. और इन्होंने अपने मुल्क अमेरिका का नाम बिल्कुल नहीं लिया इसके अंदर, इन्होंने चाइना का नाम लिया. और इन्होंने कहा जी कि चाइना की इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है वो नीचे आती जा रही है, हौले हौले स्लो होती जा रही है उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, और ये सारी दुनिया को इफेक्ट करेगी. इन्होंने अमरीका का नाम नहीं लिया कि अगर अमरीका में जैसे इन्फ्लेशन हाई और इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे है तो दुनिया को इफेक्ट करेगी, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ सारी दुनिया को जो है वो इफेक्ट करेगी. तो सारी दुनिया अगर मरना नहीं चाहती, उसके इसके आर्टिकल का मतलब ये है कि अगर वो रहना चाहती है उसके ऊपर कि जी उसकी वो चीजें सारी चलती रहें दुनिया में, सारे जो मसले चलते रहें, लोगों की औरों की भी इकोनॉमी चलती रहे, तो चाइना का मरना जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होना चाहिए.
अच्छा, 97 बिलियन डॉलर्स लास्ट मंथ उन्होंने जो है वो भेजा है एक्सपोर्ट जो है चाइना की, 97 बिलियन डॉलर्स, इट्स नॉट अ इजी थिंग,
नॉट इजी थिंग. हाँ जी, और ज्यादातर तो उन्होंने अब अपनी जो है शुरू कर ली है रशिया के साथ शुरू कर ली है, तो ऐसे है. लेकिन उसमें उन्होंने जो न्यूयॉर्क टाइम्स की ये स्टोरी है वो कहते हैं कि असल में इनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे आई है इसलिए क्योंकि जो बीजिंग है उसकी जीरो कोविड स्ट्रेटजी है. जैसे ही 4-5 केसेस किसी भी शहर में आ जाते हैं पूरे का पूरा शहर वो शट डाउन कर देते हैं, वो शट डाउन कर देते हैं उसकी वजह से. वो कहते हैं जी जो 2020 का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें चाइना की इकोनॉमी ऑलरेडी 6.9% से श्रिंक की थी, और उसी वक्त से ये डर पड़ गए थे कि अगर ये अपनी पॉलिसी पे चलते रहेंगे तो दुनिया सारी को भी इफेक्ट होगा. इसके अलावा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है उन्होंने भी कहा है कि हम ये अपनी जीरो टॉलरेंस जो कोविड 19 के लिए पॉलिसी है स्ट्रेटजी जो है इन प्लेस रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. ये इस वक्त जो है चाइना कह रहा है कि हम शायद इस साल में 5.5% से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी. अगर चाइना की 5.5% से करेगी तो और जो है एक्सपर्ट्स इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बाकी दुनिया का तो आप 1 और 2% पे ही रखें, इससे ज्यादा नहीं है, और ये भी बड़ा कमाल होएगा अगर वो होंगे. लेकिन एट द सेम टाइम इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने ये भी कहा है कि हमें लग नहीं रहा है कि चाइना की 5.5% से ग्रोथ इस साल होगी, शायद 4 के पास रहेगी, 4.3 ऐसे करके. तो ये बहुत ज्यादा जो है खतरे का बायस हो सकती है क्योंकि हालात दुनिया में और खराब होंगे. न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई है, और न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी के बाद अगर आप देखते कि जैसे जो ट्विटर था तो ऐसे लगा जैसे बिफर गया बिल्कुल ही. अच्छा जी, ये जो स्टोरी थी न्यूयॉर्क टाइम्स की, ये कह रही थी कि बाइडन और MBS जो हैं, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि बाइडन साहब जो हैं सऊदी अरेबिया पहुंच गए हैं, सऊदी पहुंच गए हैं, वो सऊदी में जिस वक्त वो पहुंचे हैं तो किंग सलमान से मिलने के लिए जाने से पहले उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा जी कि वो जेस्चर दिखाया है ऐसे करके ना, ऐसे अपने हाथ से मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिले हैं. और वो लोग कहते हैं वहां पे, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि ये इनके बीच में जो एक्सचेंज था ये वर्डलेस था, एक दूसरे से इन्होंने एक भी बात नहीं की. अच्छा जी, अब जब ये स्टोरी आई न्यूयॉर्क टाइम्स की तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हाँ हाँ US जो है वो बड़ा ह्यूमन राइट्स का वो है
चैंपियन
है और बड़े हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा है, बट व्हाट टू डू, सऊदीज हैव ऑयल, उनको उनका ऑयल चाहिए.
नहीं, नहीं, मगर ये तो यहाँ बेट्स लगी थी ना कि ये शेक हैंड करते हैं या नहीं करेगा.
हाँ, बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि वैसे तो ये जिस वक्त इसराइल भी जा रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये शेक शुक नहीं करेंगे हैंड, क्योंकि जब शुरू में गए तो इन्होंने ऐसे ही अपने हाथ के साथ किया,
बट
लेकिन फाइनली फिर उन्होंने शेक हैंड करने शुरू कर दिए, अपनी पॉलिसी से वो हट गए शेक हैंड. तो इधर भी वो कह रहे थे कि पता नहीं शेक हैंड करेंगे, तो व्हाइट हाउस ने बड़ी क्लैरिफिकेशन दी थी, नहीं नहीं मोहम्मद बिन सलमान और बाकियों के साथ जो उनका यूजुअल तरीका है उसी से से ये मिलेंगे. तो लोगों ने फिर पूछा कि इसराइल में क्यों नहीं यूजुअल तरीके, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो कोविड के खतरे के पीछे वो इतना ज्यादा चेक नहीं. तो आज जो है ना ट्विटर जो है वो बिल्कुल पागल हुई हुई थी इस चीज के ऊपर कि ओ ये अमरीका जो है वो झुक रहा है अब. पहले तो कह रहे थे बाइडन साहब कि ये पैरिया है और मैं तो बिल्कुल इनके साथ ये करूंगा वो करूंगा, तो अब तो उधर खुद पहुंचे हुए हैं और बड़ा उनको प्यार दिखा रहे हैं. अच्छा अच्छा जनाब, जो है रॉयटर्स की खबर फिर आई पूरी डिटेल में, जो इनकी मुलाकात हुई किंग सलमान के साथ फाइनली बाइडन साहब की, तो उसके अंदर इन्होंने कहा जी कि इसके अंदर जो अल सलाम रॉयल पैलेस, ये देखें जी रॉयल पैलेस इन जद्दा, अल सलाम जो पैलेस है उसके अंदर इनकी मुलाकात हुई. इसमें मोहम्मद बिन सलमान भी बैठे हुए थे, क्राउन प्रिंस जो है सऊदी के, सऊदी मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुसैद बिन मोहम्मद अल एबन भी थे, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन, यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन और भी बेशुमार लोग जो थे यहां पे इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे जब बाइडन साहब जो हैं किंग सलमान के साथ बात कर रहे थे. वो कहते हैं जी कि हम बिल्कुल किंगडम को इस मौके पे आइसोलेट नहीं करना चाहते जबकि यूरोप के पास गैस और ऑयल नहीं है, तो हम इनके साथ रीजनल ये पावर हाउस है. आज इन्होंने माना है अमरीका ने कि सऊदी इज एक्चुअली द रीजनल पावर हाउस और हम इसके साथ जो है टाइज और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, इसलिए कि चाइना और रशिया का वैसे भी जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इस इलाके में बढ़ता चला जा रहा है. हालांकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अमरीका के जेक सलिवन, उनका कहना है कि इमीडिएटली तो सऊदी ने कोई इनको बहुत ही मतलब है वो बतनी दिखाई कि एक सेकंड में हम आपको जो है प्राइसेस वो गैस देना शुरू कर देंगे और ऑयल देना शुरू कर देंगे. लेकिन वो कहते हैं कि ये आइस ब्रेक करने में ये मीटिंग जो है बड़ा करेगी क्योंकि गैस की प्राइसेस बेतहाशा हाई हैं. इसके अलावा बाइडन साहब इधर इसलिए भी रहना चाहते हैं कि ये सैटरडे के दिन यहां पे अब शुरू होने वाली है जो जीसीसी में के जो लीडर्स हैं उनकी ओपेक प्लस की. लेकिन ये जो मीटिंग है ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ओपेक में तो सिर्फ अरब कंट्रीज हैं, राइट. ओपेक प्लस में रशिया भी है.
सही.
तो जिस वक्त ओपेक प्लस की मीटिंग जब शुरू होगी सैटरडे वाले दिन, तो उसमें रशिया का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव तो आएगा.
सही.
और वो अगर आएंगे और अगर वो उसमें रूल आउट कर देते हैं कि नहीं जी आपने अमरीका को नहीं देना है ओपेक से ऑयल, तो वहां पर फिर फटे पड़ेंगे. बहरहाल जो अमरीका है वो बड़ा होपफुल है कि हम जो किंग सलमान के साथ बात करेंगे क्योंकि हमारा बड़ा ओल्ड टाइम एलाय है, तो पायन फिर ओल्ड टाइम एलाय को के बारे में खिलाफ इतनी गंदी बातें नहीं करते ना, तो वो जो है वो हमारा जरूर ख्याल करेगा. अच्छा यहां पे जो लोग थे उन्होंने ये पूछा इनसे बाइडन साहब से जिस वक्त ये इसराइल में खैर थे कि आप जो हैं हम उधर जाके बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की सऊदी अरेबिया में, तो उन्होंने कहा हाँ जी जी यस उन्होंने कहा. ते पायन हूं जिस वे ऑयल मंगोगे तो फिर ह्यूमन राइट्स की गल नहीं तुसी कर सकते क्योंकि आपका फिर वही हाल होगा जो चाइना ने किया था जो हमारे कैनेडियंस ने, हाँ कैनेडियंस के साथ कैनेडा ने जाके जब अभी ह्यूमन राइट्स का मुंह से दो लफ्ज ही निकाले ना, उन्होंने कहा जी दैट इज द डोर गो बैक टू कैनेडा, बात नहीं करनी हमारे मुल्क में. तो सऊदी के अंदर भी यही जो है एटमोसफेयर है, बात नहीं आप कर सकते उनकी किसी भी, हाँ इंडिया में भी. खैर इंडिया में आप बात तो कर सकते हैं, वो सुन लेते हैं इसका, वो दूसरा बात है कि वो उसका रिएक्शन शो कर देते हैं,
उसका फौरन वो कह देते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस.
हाँ माइंड योर ओन बिजनेस वो सुन लेते हैं, ये बाकी के तो सुनते भी नहीं है, राइट. अच्छा तो वो उन्होंने कहा जी कि आपने ह्यूमन राइट्स की बात करनी है कि नहीं करनी है, वो कहते हैं जी वी आर वेरी बिग ऑन ह्यूमन राइट्स, वो तो बात होगी है तो अब कैसे होगी, मुंह कैसे खुलेगा, पायन ऑयल दो तो थोड़े ह्यूमन राइट्स. किंग ने कहना है इतने ही चुप कर जा पायन तू. अच्छा इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि क्या आप जमाल खशोगजी, क्योंकि जिस वक्त आप इलेक्शन ट्रेल पे थे तो बड़ा आप कहते थे ये जो वॉशिंगटन पोस्ट का इन्होंने मार दिया है बंदा जमाल खशोगजी उसके ऊपर मैं बात करूंगा, ये तो अब आप करेंगे. खबरें आई हैं कि बाइडन साहब बात नहीं करेंगे जमाल खशोगजी की, नहीं करेंगे यहां पे बात जो है यहां पे. अच्छा जी इसके अलावा जो है इन्होंने कहा जी कि हम अपनी बड़ी क्लियर करना चाहते हैं पोजीशन कि हम आपके साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं और हम इनको आगे लेके जाना चाहते हैं. और सऊदी एम्बेसडर टू यूएस जो रीम बिंत बंदर अल सऊद जो हैं उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया ने हमेशा इस तरह की किलिंग्स जो हैं उनको बड़ी नफरत की निगाह से देखा है, हमारी रजीम कभी भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है और ये चीजें जो छोटे छोटे यानी कि कत्ल या मर्डर्स या कुछ इस तरह की हो जाती हैं दे शुड नॉट डिफाइन यूएस सऊदी टाइज, यानी कि उनसे ऊपर उठ के आपको जो है ये रिलेशनशिप्स बनाने पड़ेंगे. अच्छा जी अब जो जिस चीज के खतरे का जो मैंने कल इजहार किया था कि अब चीजें जो हैं खुलेंगी क्योंकि बाइडन साहब ऐसे ही नहीं गए सिर्फ ऑयल की बात करने, वो अब्राहम अकॉर्ड को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे सारे अरब और मुस्लिम कंट्रीज को कि सब लोग इसराइल के साथ दोस्ती बनाओ. ठीक है, और मैंने कल भी कहा था, आज मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, सऊदी के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर भी जोर डालेंगे कि आप भी इसराइल के साथ दोस्ती बनाएं। अच्छा, इसमें भी दो चीजें हैं, बरह वो दो चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज क्या हुआ है, जब ये पहुंचे हैं वहां पे सऊदी अरेबिया में, तो उसके कुछ घंटे पहले, सिर्फ जस्ट अबाउट टू आवर्स बिफोर ये उधर पहुंचते, सऊदी अरेबिया ने अनाउंस कर दिया, बाइडन साहब के आने से दो घंटे पहले सऊदी में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम अपनी एयर स्पेस जो है तमाम लोगों के लिए इंक्लूडिंग इसराइल हम खोल रहे हैं। इससे पहले क्या था कि इसराइल के तैयारे जो थे उनको बहुत लंबा रूट लेके जो है वो जाना पड़ता था, क्योंकि सऊदी से वो के ऊपर से फ्लाई करके अरब कंट्रीज में नहीं जाते थे, जिसमें उनकी कॉस्ट ज्यादा आती थी, पेट्रोल ज्यादा यूज, फ्यूल ज्यादा यूज होता था, और बहुत ज्यादा जो है इनके पैसे लगते थे। तो आज जो इसराइल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं मीरव मिशेली, उन्होंने आज कहा है कि ये दिस इज एन एक्सट्रीमली गुड और वेलकम न्यूज, और अब हमारी जो फ्लाइट टाइम्स जो है वो शॉर्ट होंगे, प्राइसेस लो होंगी। इसके अलावा अमरीका जो है, बाइडन साहब ने खुद बहुत ज्यादा इस मूव की तारीफ की, और उन्होंने कहा है कि, लेकिन उन्होंने एक और भी बात की है, विच अगेन अगर आप इफ यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, कि सऊदी अरेबिया ने ये जो कुछ किया है, ये बाइडन साहब के वर्ड्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि थैंक्स टू मंथ्स ऑफ स्टेडी डिप्लोमेसी विद सऊदी एंड इसराइल, यानी बैकडोर चैनल से जो चल रही थी वो उसमें ये कॉन्स्टेंटली सऊदी को कह रहे थे कि भाई तुम भी अच्छे ताल्लुकात बनाओ इसराइल के साथ। तो ये सारी चीजें जो है चल रही थी, तो वो कहते हैं जी कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और केएसए के बीच में जो बातें चल रही थी उसके। अच्छा जनाब, एस्टन मार्टिन, वाओ एस्टन मार्टिन, माई ड्रीम कार, हाय वे। तो एस्टन मार्टिन के शेयर जो है जी, वो 20% जंप कर गए हैं, क्योंकि ये जो यूके लग्जरी कार मेकर है, इसने अनाउंस किया है कि सऊदी अरेबियाज पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड इज बिकमिंग द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन द कंपनी, और इनके पास 17% स्टेक्स होंगे। PIF यानी कि सऊदी अरेबियन पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने 78 million pounds इन्वेस्ट किए हैं जी एस्टन मार्टिन में, एंड अनदर 575 million pounds इन राइट्स इश्यूज। तो इससे पहले जो था मर्सिडीज बेंज एजी, उसके पास थे, वो सेकेंड हाइएस्ट शेयर होल्डर था 9.7% से, लेकिन अब इससे भी उनके जो हैं वो ज्यादा स्टेक्स बढ़ गए हैं, और अब ये जो हैं PIF की ये जो इन्होंने ओन किया है उसकी वजह से अब ये लूसिड मोटर्स और यूके सुपर कार ग्रुप जो मैकलारन है उसको ये अब उसमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अपना जो ऑयल पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं।
सही।
तो ये ह्यूज किस्म की और है, तो उसकी वजह से ये बिल्कुल मर रही थी एस्टन मार्टिन जो है कंपनी, मर रही थी, तो अब इसको फिर से नई लाइफ जो है वो मिली है। द वायर की आज एक स्टोरी है जी, और ये इनके सीनियर जो जर्नलिस्ट सीनियर एडिटर हैं सिद्धार्थ वर्धाराजन, उन्होंने आज ये स्टोरी लिखी है, और वायर की स्टोरी जो वर्धाराजन साहब ने लिखी है उसकी हेडलाइन है, द एविडेंस इज इन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज डेड इन इंडिया। ये लिखा जी द वायर के सीनियर जो एडिटर हैं उन्होंने। उन्होंने कहा है, वैसे तो हिंदुस्तान के अंदर जो है अब इस वक्त तो जो कोई भी मोदी जी या उनके बहुत ही क्लोज जो एल आए हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ, उनके खिलाफ अगर कोई आदमी लिखता है तो वो जो है इट इज द बिगेस्ट क्राइम इन इंडिया टुडे, क्योंकि इन दोनों लोगों को अब क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं वैसे तो आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडिया का, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत देता है, और किसी को क्रिटिसाइज करना तो बिल्कुल ही अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में ये यही बनता जा रहा है। वो कहते हैं जी ईदी अमीन की उन्होंने एक लाइन जो है वो कोट की है, उन्होंने कहा देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच बट वी कांट गारंटी फ्रीडम आफ्टर स्पीच। तो वो कहते हैं जी यही कुछ हाल जो है इस वक्त इंडिया के अंदर चलता जा रहा है। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स ली हैं, उन्होंने कहा जैसे कि सीए का मसला था, जो दिल्ली में राइट्स हुए थे, या कि जो डिमोलिशंस हो रही हैं, और अभी जो लेटेस्ट जो कॉलोनल गंज के अंदर जो 5 लोगों को सिर्फ इसलिए जो है वो अरेस्ट किया है क्योंकि उन्होंने एक तस्वीर सिलेंडर के साथ मोदी जी की छापी जिसके के ऊपर लिखा गैस सिलेंडर नाउ 1,105 रुपीज बाय बाय मोदी जी, और उसके बाद जो है अग्निपथ जो रिक्रूटमेंट स्क्रीम है उसके जो है उन्होंने के बारे में लिखा कि ये अब किल करेंगी हमारी मिलिट्री को भी। तो उसके ऊपर जी कुछ लोकल एमपीज ने शिकायत की और इनको पकड़ लिया और इनको बड़ी सजाएं दी। इसके अलावा एक 18 साल का बच्चा आशीष यादव कन्नौज के अंदर, उसको पकड़ लिया क्योंकि उसने एक तस्वीर बनाई सोशल मीडिया पे योगी आदित्यनाथ की कि वो फीडर लेके जो है वो पी रहा है और उसके सर के ऊपर जो है जूता है, तो उसको भी पकड़ लिया। वो कहते हैं हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा डिटेरियोरेशन हो गई है स्टार्टिंग फ्रॉम नेहरू साहब का जमाना, वो कहते हैं नेहरू साहब के जमाने में एक कार्टूनिस्ट था शंकर, उस शंकर ने ही वॉज सेलिब्रेटिंग 1953 में एक जो है कोई हमारा एक इवेंट कर रहा था और उसमें उसने जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर था उस जमाने में उसकी नंगी तस्वीर छाप दी थी। तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने शंकर जी से बड़ी माफी मांगी और उन्होंने कहा शंकर साहब प्लीज एटलीस्ट स्पेयर मी, और वो कहते हैं लेकिन उसने अपना पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं उसके खिलाफ बना लिया। उसने क्या किया कि वो उस कार्टूनिस्ट को लेके अपने साथ यूएसएसआर के दौरे पे जा रहे थे 1955 में, तो वहां पे ही वो अपने साथ इनको ले गए। तो वो कहते हैं ये सारे जो कार्टून थे उस जमाने के, ये ऋतु गेरोला की जो कंडूरी है उसकी किताब कैरिकेचरिंग कल्चर इन इंडिया, उसके अंदर ये सारी जो है ये डाली गई है। तो जनाब ये है। अच्छा जनाब एक और स्टोरी है द वायर की, एंड दिस इज रिटन बाय गौतम भाटिया, और इसके ऊपर इन्होंने कहा डेमोलिशंस के ऊपर इन्होंने जो है वो बात की है, और उन्होंने कहा कि जैसे जॉर्ज ऑरवेल का जो 1984 की जो बुक उनकी आई थी और उन्होंने कहा था कि पार्टी ने तुम्हें बता दिया है कि तुम्हारी आंखें और आईज जो हैं जो भी एविडेंस देख रही हैं वो उसको रिजेक्ट करती हैं। वो कहते हैं जी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो भी वैसे ही, वो जॉर्ज ऑरवेल का 1984 का नॉवल बनता जा रहा है, जगह जगह पे हिंदुस्तान में जो है डेमोलिशन हो रही हैं, और वो कह रहे हैं वो ये रिफ्यूज कर रहे हैं देखने से कि कितना जुल्म लोगों के साथ हो रहा है। तो वो कहते हैं जी कि ये आई मीन व्हाट इज गोइंग ऑन, ये इंतहाई इलीगल और प्यूनिटिव काम है, और जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो रिजेक्ट कर रहे हैं इस एविडेंस को अपनी आंखों से देखने से या कानों से सुनने से। सो दैट इज अ वेरी स्टेट जो है सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। पाकिस्तान के अंदर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जी मरियम औरंगजेब, उन्होंने कहा जी कि कल का जो जजमेंट आया है कोर्ट का जिसमें कि उन्होंने कहा है जी कि ये जो स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, इन्होंने गलत किया नो कॉन्फिडेंस मूव को खत्म करने के लिए, तो अब हम कह रहे हैं कि एक कमीशन बनाया जाए और अंडर आर्टिकल 6 जो है हाई ट्रीजन के केस जो हैं ये स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो फॉर्मर थे उनके ऊपर जो है अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए ये एक ट्रीजन का केस बिठाया जाए। लाहौर की जो स्पेशल कोर्ट है जी उसने जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान हैं उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर जो है ऑफेंडर करार दिया है क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम आए थे कि 16 बिलियन रुपीस के उन्होंने अपने एक आदमी अपने दोस्त के साथ मिलकर इन्होंने ये किए थे, एम्बेजलमेंट्स किए थे। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी पूछा है कि मकसूद चपरासी जिसको बोलते थे उसका नाम था मकसूद, तो वो जो यूएई में जिसकी डेथ हो गई थी क्यों हुई उसका आके भी ये जवाब देंगे। उन्होंने कहा जी जुलाई 30th एब्सोल्यूटली लास्ट डेट है, आपको पहले भी बुलाया आप नहीं आए तो अब आपको आके बताना चाहिए पड़ेगा क्योंकि एफआईए ने इनके खिलाफ एक पिटीशन डाली थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जी उसके अंदर एक मोहम्मद अरशद नाम का आदमी है उसने एक पिटीशन डाली है और उसने कहा जी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं इनकी बेगम बुशरा बीबी और इनके जो सोशल मीडिया के हेड थे डॉक्टर अरसलान खालिद इनके खिलाफ जो है एक इंक्वायरी बिठाने की जरूरत है क्योंकि इन्होंने अदारों को बदनाम किया है। चाइनीज कंपनी यूटोंग बस जो है या कराची के अंदर या हैदराबाद के अंदर जी अपना एक प्लांट खोल सकती है और उसकी वजह से जो बसें हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म की वो मिलना शुरू हो जाएंगी। यूटोंग बस काउंटी मैनेजर पॉल जैंग ने ये कहा है, उनकी मुलाकात जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं प्रोविंशियल सिंध के शर्जील इनाम मेमन उनके साथ हुई थी, तो उन्होंने कहा जी वी आर इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप अ प्लांट ओवर हियर। और जनाब
ये भी जला देंगे
ना, जला देंगे बस क्या करेंगे। अच्छा जी एंटरटेनमेंट की स्टोरीज में सबसे पहले तो वही अब फिर सुशांत सिंह राजपूत का किस्सा चल पड़ा है। आज उसकी बहन जो कि खुद भी एक क्रिमिनल लॉयर है प्रियंका, उसका आज इंटरव्यू आया है। उसने कहा जी ये लड़की जिस दिन से मेरे भाई की जिंदगी में आई थी उसने इसकी जिंदगी खराब कर दी थी। मैंने बहुत सारे सुसाइड के केसेस देखे हैं, जब आप सुसाइड करते हैं आपकी आंखें और जुबान बाहर आ जाते हैं। मैं अपने भाई को जब मिलने गई थी तो उसकी आंखें और जुबान बाहर नहीं थे और ना ही जिस पंखे से वो कहते हैं लटक इसने खुदकुशी की है वो बहुत दूर था और ये इतना भी टॉल नहीं था उससे लटक के जो है वो मर सकता था। इसने मेरे साथ भी लड़ाइयां कराई, मेरे भाई की जिंदगी को खराब किया और उसकी फिर फाइनली जान ले ली। एंड जनाब कंगना रनावत साहबा अब नजर आएंगी, एक मूवी नहीं आ रही है इमरजेंसी, वो इमरजेंसी जो कि इंदिरा गांधी साहबा ने लगाई थी उसके ऊपर, तो इसके लिए इन्होंने जी बहुत जबरदस्त जो ऑस्कर विनिंग डेविड मिलोंस्की, ये देखे माज भाई मेकअप कैसा जबरदस्त उसने किया, उसने जी उसको ये बुलाया गया है और उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा जी कि मैंने इससे पहले जयललिता का थालवी में रोल किया था लेकिन डेविड मिलोंस्की ने जिसने मेरे साथ बहुत सारी मुलाकातें की और फिर ये बहुत सारे टेस्ट किए उसके बाद ये ऐसी लुक दी है कि बिल्कुल मैं इंदिरा गांधी जो है वो लग रही है। है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली यंग इंदिरा गांधी, शी लुक्स लाइक यंग इंदिरा गांधी, क्योंकि इसने डेविड ने बहुत सारे मजद भाई ऑस्कर बेस्ट मेकअप के लिए और 2018 का बैफ्टा और बहुत सारे अवार्ड जीते हुए हैं। कैटरीना कैफ की जनाब कल बर्थडे है, लेकिन कल चूंकि छुट्टी होगी तो हम आपको आज ही बता रहे हैं, अपने हबी विकी कौशल के साथ ये मालदीव्स में गई हुई हैं और इनके साथ और भी बहुत सारा बड़ा गैंग गया हुआ है, सनी कौशल जो विकी के भाई हैं, शरणवी वाघ, मिनी माथुर, कबील खान इनके साथ हैं, और जनाब सलमान अहमद जो कि जुनून के गिटारिस्ट थे उनके ऊपर जनाब आज जो है वो FIA ने उनको एक नोटिस भेजा है, क्योंकि उनके ऊपर ये है कि वो ट्विटर के ऊपर बहुत गलत गलत बातें कर रहे हैं। इन्होंने सारा इल्जाम जो है राणा सनाउल्ला और जो है शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर और जो हमजा शरीफ हैं और मरियम नवाज हैं उनके ऊपर डाला है, और उन्होंने कहा जी ये थ्रेट कर रहे हैं मुझे और मेरी फैमिली को, जिस तरह से कि ये थ्रेट कर रहे थे इमरान रियाज जर्नलिस्ट, अयाज अमीर, जमील फारूकी, समी इब्राहिम जैसे जर्नलिस्टों को थ्रेटन कर रहे हैं उसी तरह मुझे भी कर रहे हैं, लेकिन मैं लोगों को कहता हूं कि आप लोग बाहर निकलो और इन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के लोगों के खिलाफ वोट दो। और हमारे जो एक्स कैप्टन है जी पाकिस्तान के आमिर सोहेल साहब 55 ईयर्स एज है, श्रीलंका पहुंच गए हैं, कमेंट्री करेंगे, लेकिन वो बड़े खुश थे, वो कह रहे थे जी कि ये जो अब क्रिकेटर्स को लेजिटिमेट तरीके से पैसे दिए जा रहे हैं उसकी वजह से वो मिलियंस बनाते हैं, तो अब उनको कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि ये जो है हमें टू मच क्रिकेट हो रही है, तो उनको खुश होना चाहिए। आमिर सोहेल का ने 47 टेस्ट खेले थे और 156 ODIs लिए थे, अब वो टीवी की कमेंट्री के लिए श्रीलंका में हैं। बाबर आजम से आज मीडिया ने श्रीलंका में क्वेश्चंस किए कि भई आप कंसर्न तो नहीं है ये जो श्रीलंका के अंदर जो इतनी ज्यादा जो है केओस मचा हुआ है, उन्होंने कहा कि नहीं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ अस, बहुत हमारा अच्छा ख्याल कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी जो है वो ग्रेट है, हमने अभी 3 डे वार्म अप मैच किया है तो हमें कोई खतरा नहीं है सिक्योरिटी का, वी आर बींग टेकन केयर ऑफ। और अब इन्होंने पाकिस्तान टीम जो है वो गाले चली गई है क्योंकि 16 से यानी कि कल से इनके जो हैं टेस्ट मैचेस शुरू होने वाले हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट आवर कनेडियन ग्रिल्स, आपको पता ही है कि इन्होंने पहले USA को हराया था टोक्यो ओलंपिक्स के सेमीफाइनल्स में, और अब इनकी फिर से मुलाकातें जो हैं होने वाली हैं ये जो कॉन कैन कैफ की जो फाइनल में वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसके अंदर। इससे पहले कनाडा ने जमैका को 18-1 से हराया था और USA ने कोस्टा रिका को हराया था 15-2 से, तो अब इनकी मुलाकातें आपस में दोनों राइवल्स की होंगी मंडे को।
और साहब आज 7 बजे ब्लू जेस देखना नहीं भूलिएगा, नीले जय कल हार गए परवाह ना करो
क्योंकि वैसे भी 50 में से उन्होंने 2 ही गेमें जीतनी होती हैं।
नहीं नहीं, डोंट लिसन टू हर, डोंट एब्सोल्युटली नॉट, डोंट लिसन टू हर एब्सोल्युटली नॉट। थैंक यू जी। एक हमारे स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, उनसे मुलाकात होगी, उसके बाद फिर गपशप।
थैंक यू मच भाई,
थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ,
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
Ringing, buzzing, hissing, time to get your hearing checked.
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगे आसान। 11 साल से ज्यादा तजुर्बा और एक भरोसामंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659, लाइसेंस नंबर 10530।
बटाला सुपर मार्केट, बटाला सुपर मार्केट, हलाल मीट ते सब्जियां नाले फल भी ताजा मिलदे, इत्थे मछली अंडे दूध दही ते सस्ते चावल मिलदे, भल्ले पकौड़ियां ताजा मिठाइयां गर्म समोसे मिलदे, बटाला सुपर मार्केट।
स्कारपोरो दी वाहिद ते मिसाली सुपर मार्केट, बटाला सुपर मार्केट, 200 मार्कम रोड स्कारबोरो, मार्कम रोड इंग्लिंटन दा संगम, फोन 416-264-3111।
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी ऑन लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA. तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड. मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9054551666. टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स.
मेस्मराइज ऑप्टिकल सनग्लासेस आई ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेस.
डॉक्टर ऑन साइट, गेट योर आई साइट चेक्ड. मेस्मराइज ऑप्टिकल
मार्कम एंड शेपर्ड 1789 मार्कम रोड 4163350786.
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ. हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आता है इनके. आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे. हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तिगड़म लड़ा सकते हैं. बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा. $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं? कॉल हैरी सॉन Now 6472281000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान. लेजर टूथ वाइटनिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स इंटीरियर के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट यूनिट 104 मिसेस सागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव.
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100. कंसल्टेशन एब्सोल्यूटली फॉर फ्री. डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा.
कैनेडियन इमिग्रेशन के लॉज और पॉलिसीज में मुस्तकिल तब्दीलियां आती रहती हैं, इसीलिए इंतहाई जरूरी है कि आपका काम माहिराना तरीके से ताज़ा तरीन मालूमात के तहत किया जाए. मेरा नाम यास्मीन तैयबी है और मैं गुज़िश्ता 25 सालों से सिटीजनशिप, पीआर रिन्यूअल्स, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और एजेंसी के पेचीदा केसों को कामयाबी से करके हजारों लोगों की रहनुमाई कर चुकी हूँ. आप मुझसे 9055130012 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या canimsolutions.ca पर जाकर हमारी फर्म के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं. हमारे ऑफिस में सर्टिफाइड उर्दू टू इंग्लिश तर्जुमे की भी सहूलियत मौजूद है.
ग्रिल इन द हट मिसेस सागा में ऑर्डर वाया फोन. इमरान भाई को कॉल करें.
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को एंजॉय करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 9054058383. ग्रिल इन द हट. खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगू. आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन. फिलिंग्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, क्लीनिंग, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, फ्री कंसल्टेशन. दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट 2997466.
Grill and Chick, delicious and healthy grilled chicken and rotisserie chicken sandwiches, burgers, wings, squares, popcorn chicken, salad, garlic bread, sweet dishes. Aapne pahunchna 15 Montpelier Street, Brampton, Mississauga Road and Financial Drive Commercial Intersection. Grill and Chick 9054560500. Grill and Chick.
गाड़ी, घर या कमर्शियल, जैसा कि बिजनेस ट्रक्स, डिलीवरी व्हीकल्स, कार्गो वैन्स, वर्कशॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से राब्ता कीजिएगा. वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार, घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दें, मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले. यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस, मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम 4163022522 302-2522.
सुनो सुनो सुनो, बॉब कैलहन फ्लावर सिटी सीनियर सेंटर पर मेंबरशिप शुरू हो चुकी है. आज ही अपनी मेंबरशिप खरीदें और सारे प्रोग्राम, सर्विसेज और स्पेशल इवेंट्स का हिस्सा बनें. इसके साथ ही एक सोशल एनवायरनमेंट से अपना रिश्ता जोड़ें. ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें www.brampton.ca/register for programs. सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की तरफ से एक पैगाम.
स्प्रिंग में गार्डनिंग सीजन अब शुरू हो चुका है कैलेडन सब्जी फार्म पर।
हर तरह के फल फूल और सब्जियों की पनीरी, चाहे लेने हो करेले,
भिंडी,
चप्पड़ कद्दू,
टिंडा,
हलवा कद्दू,
रामतोरी,
पालक,
सरसों का साग,
धनिया,
लहसुन के बीज,
प्याज की पनीरी,
प्याज के बीज और हर तरह के गार्डनिंग टूल्स,
पतली,
रम्भा,
कई,
मिट्टी, खाद और पॉटिंग मिक्स।
एट कैलेडन सब्जी फार्म 9058409000
0050 Airport Road, Caledon, Airport Road and Mayfield के कॉर्नर पर।
अब मॉर्गेज लेना और भी आसान, सेंटम फ्यूचर मॉर्गेज ग्रुप के काकब जावेद को कॉल करें। प्राइवेट मॉर्गेज फॉर एनी purposes, कमर्शियल मॉर्गेज, इंडस्ट्रियल मॉर्गेज, फार्म एंड हॉबी फार्म, वेरी कंपेरेबल rates फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मॉर्गेज, न्यू कमर्स टू कैनेडा, फर्स्ट टाइम बायर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, रीफाइनेंसिंग, डेब्ट कंसोलिडेशन, assist in real estate. He will make mortgage easy for you. Kokab Javed, mortgage agent, 416-454-6065.
दांतों के इलाज के लिए डॉक्टर ने बिल बहुत ज्यादा बता दिया। सोचती हूँ बैक होम जाके दांतों का मुकम्मल इलाज कराऊं।
छोड़ो भाई, किंग बेस्ट स्माइल डेंटिस्ट्री को विजिट कर लो। दांत निकालना हो, क्राउन्स, ब्रिजेस, डेंचर्स, इम्प्लांट्स, बच्चों के दांतों का मुकम्मल इलाज, रूट कैनाल ट्रीटमेंट और नए पेशेंट्स के लिए फ्री इलेक्ट्रिकल टूथ ब्रश भी है। कंसल्टेशन इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री।
पर जाना कहाँ है?
288 किंग स्ट्रीट वेस्ट, हैमिल्टन में, 905-520-905-521-0540.
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज नासर शाह। आपको पता है पिछले 20 सालों से हम मॉर्गेजेस कर रहे हैं, लोन्स कर रहे हैं और कमर्शियल मॉर्गेजेस कर रहे हैं। अगर आपको किसी तरह की मॉर्गेज चाहिए तो गारंटी आपको बेस्ट रेट ऑफर करेंगे और साथ साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनका भी बड़ा ध्यान रखते हैं। और कमर्शियल मॉर्गेज कभी भी आपको चाहिए किसी तरह की, होटल, मोटल, गैस स्टेशन या कोई फ्रेंचाइज लेनी या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाय करना, तो उसके लिए भी हमें कॉल करें। और अगर आपको बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए तो उसके लिए भी हमें कॉल करें।
6477419000। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार फिर से मैं आपके साथ आरिफा मुजफ्फर। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी मुलाकात एक खास शख्सियत से कराएंगे। इंसान अपने उठने और बैठने से पहचाना जाता है। ऑफ कोर्स अगर मैं किसी अच्छे शख्स के साथ मेरा बैठना होगा तो मैं कोई अच्छी चीज़ ही सीख के निकलूंगी। ये इंसान की कंपनी है जो हमें सही रास्ते पे या गलत रास्ते पे लेके जाया करती है। वी आर डेफिनेटली ऑनर्ड एंड मेरे साथ इस वक्त बड़े सगीर पाक व हिंद की बड़ी अहम शख्सियत मौजूद हैं। हिंदुस्तान में तकरीबन 500,000 इमाम्स हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को जो लीड कर रहे हैं डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियास साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं इस मामले में आई नॉर्मली जर्नलिस्ट या रेडियो एंड टेलीविजन से मुतल्लिक अपनी लीड के बारे में इजहार नहीं करते। आई ऑलवेज मेंशन दोज हु हेल्प अस टू ब्रिंग इस किस्म की शख्सियत को हमारे साथ मुलाकात या चैनल के ऊपर लेके आते हैं, टेकिंग द प्राइड ऑफ ब्रिंगिंग सच रिनाउंड पीपल ऑन एयर। मैं उनको हमेशा एक्नॉलेज करती हूँ। थैंक यू वेरी मच जनाब सईद मियो साहब का बहुत शुक्रिया जिनके तवस्सुत से मेरी उनसे मुलाकात हुई। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है तकरीबन 500,000 इमाम्स की ऑर्गेनाइजेशन है और 200 मिलियन जो मुस्लिम्स हैं ये इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दुनिया की लार्जेस्ट इमाम्स की ऑर्गेनाइजेशन है। आई एम हम्बल्ड के जनाब डॉक्टर इमाम इलियास साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए। सर अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
सर बहुत शुक्रिया, कनाडा कब तशरीफ लाए आप?
मुझे आए काफ़ी टाइम हो गया है। वैसे तो मैं ईद के बाद अमेरिका आ गया था, मेरी बेटी अमेरिका रहती हैं।
जी जी।
और उसके बाद फिर मैं यहाँ, मेरे दोनों बेटे कनाडा में रहते हैं तो उनसे मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये मेरा टोटली पर्सनल विजिट है, मैं अपनी फैमिली के साथ मिलने आया हूँ। तो दोनों बेटे यहीं हैं तो बेटी को भी अमेरिका से भी यहीं बुला लिया है और उनके साथ मैं रह रहा हूँ और उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं कनाडा को। और और इसी बीच में बहुत लोगों से मिलने का भी मौका मिला, बहुत से लोगों को, चूंकि मालूम नहीं था, चूंकि मेरा पर्सनल टूर है तो लोगों को बहुत सारी,
इससे पहले भी कभी तशरीफ लाए हैं?
हाँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर 2009 में मैं यहाँ पर आया था, स्टीफन हार्पर जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी दावत पर, उन्होंने मुझे 2009 में पार्लियामेंट को एड्रेस करने के लिए इनवाइट किया था, 2009 में स्टीफन हार्पर ने।
अच्छा।
आप कैनेडियन पार्लियामेंट को एड्रेस करें, तो मैं यहाँ पर उसको एड्रेस करने आया था, उनका मेहमान था, तो उसके बाद से ये मेरा आना
था। आप स्टेट विजिट पे आए थे 2009 में?
जी 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 जी, उसके बाद से फिर मैं, चूंकि मेरे बेटे यहाँ आ गए थे, तो उसके बाद से फिर मैं इनसे मिलने के लिए बच्चों से आया।
सही, बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया सर। आपकी जो तालीम को जब मैं देखती हूँ, और यकीनन आपने डॉक्टरेट भी किया, और मैं देख रही थी कि आपको इमाम उमर अहमद इलियास हैज बीन अवॉर्डेड अ डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी बाय देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब, तो वेरी लर्नर्ड मैन सर। मेरा यहाँ से, आप इमामों को रिप्रेजेंट करते हैं, और टोरंटो की बहुत सारी मसाजिद में जो इस वक्त इमाम यहाँ पे जो तैनात हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम इंडिया। इस वक्त मुसलमानों की जो हालत ज़ार है पूरी दुनिया में, आप उसके बारे में कुछ फरमाएंगे?
इस बारे में चूंकि हर जगह की, हर मुल्क की अपनी एक नौइयत है।
जी सर।
और उनके बारे में क्या कहा जा सकता है, उनके बारे में सब लोग जिस हाल में हैं ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का,
सब ठीक है।
हाँ, यकीनन जो हर हाल में शुक्राना ही है, अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा है शुक्र करना चाहिए, तो किसी तरह का मुझे तो लगता नहीं कि कोई ऐसा फिक्र वाली बात है।
सही। आपने अभी आपने बताया कि नॉर्मली जाहिर है अब दुनिया तो वैसे भी ग्लोबल विलेज बन गया, और आपने भी थोड़ी देर पहले मुझे ये लफ्ज कहा था कि किसी भी पाकिस्तानी प्रोग्राम में मैं पहली दफा हूँ। सबसे पहले तो लिविंग इन कनाडा, इट्स माय ड्यूटी एंड आई एम ऑब्लिगेटेड टू बिहेव एंड वर्क एज अ कनेडियन रिस्पेक्टिंग ऑल द लॉज एंड रूल्स ऑफ कनाडा। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। अभी आप किसी मस्जिदों में, मसाजिद में भी जब लोगों को जो पता चलता जा रहा है तो वो आपको इनवाइट कर रहे होंगे?
यहाँ की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इमाम काउंसिल कनाडा की, उनको मालूम हुआ था कि मैं आया हूँ, तो उन्होंने मेरी एक दावत रखी थी, और उन्होंने कहा था कि हमारा एक प्रोग्राम हम चाहते हैं करना, उसमें शिरकत कर लिए। चूंकि मेरा पर्सनल प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम लगे हुए थे, तो मैं उनको भी वक्त दे नहीं सका हूँ। अभी दूसरी कम्युनिटियों को भी मेरे बारे में मालूम हुआ, तो वो सब वक्त मांग रहे हैं, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है, और दूसरी बात यह है कि मुझे वापस मुल्क जाना है, तो अगली बार आने का मैंने सबसे वादा किया है कि मैं अगली बार आऊंगा तो जरूर प्रोग्राम भी करेंगे।
आपके तशरीफ लाने का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान में आई अंडरस्टैंड दिस इज, और आपका रिलीजन से, और अल्लाह करे कि आपकी सोबत में रह के अच्छी बात हम कोई सीख सकें, चलिए मैं रिलीजन के जुमरे में ही रहती हूँ। दिस इज 22nd century, 21st century अगर हम शुरू करने के लिहाज से जिक्र करें, मगर जब हम उस दौर में से गुजर रहे हैं तो बहुत से लोग इसको 22वीं सदी भी कहते हैं। टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम डिपेंड करते हैं हर चीज के ऊपर, मगर क्या बात है कि मुस्लिम उम्मा आज भी खास महीनों में, जैसे मुहर्रम का महीना है, रमजान का महीना है, ईद का चांद होता है, उसमें आई सी इन कनाडा एंड आल्सो इन पाकिस्तान, प्लीज डू शेयर अबाउट पाकिस्तान, सॉरी अबाउट इंडिया, तो क्या वजह है कि कुछ लोग चांद को देखना चाहते हैं, कुछ लोग नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए करना चाहते हैं, तो कोई इसका हल है इमामों के पास?
आपने करी है
जी,
आपने बहुत ऐसी बात छेड़ी है जो मुझे लगता है कि हर मुसलमान इस पर चर्चा कर रहा है।
जी सर।
आज के वक्त में देखिए, एक जमाना था, मैं सबसे पहले तो मैं अपनी बहन मोहतरमा आरिफा मुजफ्फर में शुक्रिया आपका भी करूंगा कि आपने मुझे यहाँ पर, हम लोग इकट्ठे हुए हैं,
हमारी खुशबख्ती।
तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि देखिए, एक जमाना था कि लाउड स्पीकर में जब अजान शुरू हुई थी, تو اس پر بڑی مخالفت ہوئی,
شیطان کا چرخہ کہا کرتے تھے
اس کو, باقاعدہ باضابطہ اس پہ فتویٰ جاری ہو گیا تھا.
جی سر.
لیکن اب آپ کو, مجھے نہیں لگتا کہ شاید اب پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسی مسجد یا کوئی جگہ بچ رہی ہو جہاں پر لاؤڈ اسپیکر میں اذان نہیں ہو رہی ہو. تو
نہیں سر, یہی پہ تو میرا سوال ہے کہ جب سائنس اپنی اختراعات کی طرف آتی ہے تو ہم بجائے اس کے کہ ان, اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ڈھونڈو, تلاش کرو, اور ہم اس تلاش کی بجائے ہم اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہم اس معمولی سی بات, چاند کے پیچھے چلے ہوئے ہیں, ہم کیوں ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں؟
دیکھیے, کل نہیں, اگر آج نہیں تو کل کرنا تو پڑے گا. دیکھیے, آپ نے بہت ایسی بات کہی ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ اس پر ہمیں بحث ہونی چاہیے. یہ ایک بحث کا مدعا ہے اس سمے, اور یہ ایک ایسی بحث ہے جس کو ہمیں ایماندارانہ کرنا چاہیے. دیکھیے, آپ کو میں بتاتا ہوں, مثال کے طور پر جس زمانے میں ٹیکنالوجی کی نہیں تھی, جب کی بات ہے یہ, مثال کے طور پہ ہندوستان کے اندر کہیں چاند دکھا, چاند دیکھنے کے بعد تین تصدیق کہیں سے آ گئی کہ بھائی چاند دیکھ لیا تو اس کو مان لینا چاہیے. جہاں تصدیق آ جائے تین, مان لینا چاہیے, لفظ تصدیق کا ہے. اب مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ میں امریکہ رہتا ہوں, انگلینڈ میں رہتا ہوں, یوروپ میں رہتا ہوں, کینیڈا میں رہتا ہوں, یہاں تو عام طور پر جو سعودی عرب میں اعلان ہو جاتا ہے اس کو مان لیتے, اس کے اکارڈنگلی یہاں ہو رہا ہے,
مگر یہاں بھی دو عیدیں ہو جاتی
لیکن,
ہیں.
لیکن خاص طور پر ہمارے ہندوستان میں, خاص طور پر پاکستان میں, ان جگہوں پر کہ بھائی جب میں اعلان کروں گا تبھی مانا جائے گا. دیکھیے, جب ایک بات ہے کہ سعودی عرب میں انہوں نے, ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ان کے پاس بڑے بڑے سسٹمز ہیں جس کے ذریعے سے انہوں نے دیکھ لیا, ٹیکنالوجی نے ہمیں بتا دیا کہ چاند ہو گیا, تو چاند ہو گیا, تصدیق ہو گئی. ایک انسان, ایک آدمی نہیں کر رہا, ایک ملک کر رہا ہے, تصدیق ہو گئی. اس کے بالکل بغل میں اور سارے ملک ہیں, انہوں نے بھی تصدیق کر دی, اعلان ہو گیا. اس کے بغل میں اگر ہندوستان کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کیرلا آ جاتا ہے اس کے نزدیک, اس نے بھی وہی اس کو فالو کرتا ہے. تو سب جگہ سے اعلان ہو گیا تو پھر کہاں گنجائش رہ گئی؟ ابھی عید کی بات ہے, ابھی پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان کے اندر چاند ہو گیا, اور افغانستان نے تمام سب نے اعلان کر دیا کہ بھائی چاند ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو نہیں مانیں گے. تو یہ جو بات ہے تصدیق کی ہے اصل, تو چاند ہے, چاند کہاں جا رہا ہے بےچارا؟ چاند تو
انڈیا میں ایک ہی عید ہوئی
بھائی, چاند تو ایک ہی ہے, چاند کہاں جا رہا ہے؟ جب بلکہ یہاں کے لوگ, اگر کینیڈا کے لوگ اور امریکہ کے لوگ اگر اس بات کو کہیں, جب تو سمجھ میں بھی آتی ہے کہ بھائی ہمارا رات اور دن کا فرق ہے, لیکن انڈیا پاکستان میں تو کوئی زیادہ فرق ہے نہیں سعودی عرب سے. تو چاند اگر وہاں سے تصدیق ہو رہی ہے, دکھ گیا, تو سب کو ایک ہو کے منا لینا چاہیے.
امام صاحب, سعودی عرب میں جب چاند دیکھ کے عید کرتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں دو دن بعد عید ہوتی ہے, اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے آپ؟
نہیں, ذمہ دار تو وہی ہوگا جو اپنی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں چاند کے اعلان کی.
صحیح,
ذمہ دار تو وہی ہوگا نا. اب گناہ عید کے دن روزے کا رکھنا اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس پر سب کو, علماء کو نہیں حاصل ہے, یقیناً علماء کو بیٹھنا چاہیے اور اس پر ایک رائے قائم.
علماء کیوں نہیں بیٹھ رہے؟
بیٹھنا چاہیے. میں اس کو, اس کی شروعات ہندوستان سے میں کروں گا انشاءاللہ. اس بار کا میں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس کی شروعات ہم کریں گے, اس میں علماء کی ہم ایک اپنی ہماری جو کونسل ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر اس پر ہم ایک بحث شروع کرنے والے ہیں. چونکہ ہندوستانی ہے, جہاں سے بدلاؤ آئے گا تو مجھے لگتا ہے کہ وہیں سے اس کی شروعات ہوگی اور وہاں سے تمام یہ فیصلہ انشاءاللہ.
سر, ایک اور چیز ہے کہ مسلمان بعض اوقات ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں. اگر میری زندگی کا جو لایا عمل ہے قرآن پاک اور احادیث ہے, قرآن پاک احادیث, ماجی جمال کی نالج مجھ سے بہت زیادہ, یہ تو لیکچرز بھی دیتے رہے, میں تو بہت نالائق سا انسان ہوں, مگر قرآن کو سمجھتے ہوئے اگر میں بات کرتی ہوں تو قرآن پاک میں یہ کہ آپ نماز بھی جب دوپہر پڑھیں تو آپ آہستہ آواز میں, جو میرے کان تک سنائی دے, ساتھ والے کو نہ کرے. بعض اوقات انڈیا میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال اور مسجد میں اذان کے حوالے سے, اور یہ ایک مسئلہ بھی بنا تھا پچھلے دنوں. تو جب میجورٹی آپ کے پاس دوسرے لوگوں کی ہے تو پھر ہم اونچی آواز میں اذان کا اور یہاں پہ وہ پھر کیوں ہے؟ مطلب مجھے تضاد نظر آتا ہے. میں نے ایک نالائق شاگرد ہوتے ہوئے یہ سوال کر دیا.
آپ کے یہ سوال ہے, یہ ایک عام سوال ہے اور یہ ایک ایسے سوال ہے جو کہ پیدا ہو رہے ہیں ابھی. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب مثال کے طور پہ کینیڈا, میں کینیڈا میں ہوں, امریکہ میں ہوں, انگلینڈ میں ہوں, یہاں بھی تو مسجدیں ہیں. یہاں پر بھی مسجدوں کے اندر اپنی پرمائسز کے اندر اذان ہوتی ہے, پرمائسز سے باہر تو ساؤنڈ اس کا نہیں جا رہا. تو یہاں بھی تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا, یہاں بھی تو سارے کام ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہم وہاں کیوں نہیں فالو کر سکتے؟ دیکھیے ساؤنڈ کا ایک نیم ہے, ساؤنڈ کو کتنا اس کا ایک طے کیا ہوا ہے کہ بھائی ساؤنڈ کتنا ہونا چاہیے, ایک اس پہ لا ہے, اس کو قانون بنا ہوا ہے, تو اس کے اکارڈنگلی چلنا چاہیے. پہلی بات تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بڑے بڑے میناروں کے اوپر
لاؤڈ اسپیکر لگا دیں,
چار ایک نہیں چار ادھر ادھر چاروں طرف لگا کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میرے پاس ایک مسئلہ آیا تھا, میرے پاس مسئلہ آیا تھا انڈیا میں ہی, ایک گاؤں کا ایک جھگڑا ہوا. ایک گاؤں تھا جو مسلم گاؤں ہے بڑا, اور ہر محلے میں ایک مسجد ہے ان کی, اور جو کہ زیادہ فاصلے پر نہیں, تھوڑے تھوڑے فاصلے پر. تو وہ ہر مسجد نے اپنی مینار کو اونچا کیا ہوا اور اس پہ چار چار اسپیکر لگائے ہوئے ہیں. تو وہ جب اذانوں کا اذان کا کنسیپٹ کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت,
پکار نماز کی پکار
اعلان ہے نا بھائی, ٹھیک ہے آ جاؤ نماز کے لیے. اب آپ اس گاؤں میں سارے ہی مسلمان ہیں اور ہر مسجد پہ بڑے بڑے چار چار لگ رہے ہیں, اتنا ساؤنڈ ہو رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اپنے ساؤنڈ کو کم کرنا چاہیے, اتنی آواز ہو رہی ہے, لوگوں خود کو پرابلم ہو رہی تھی.
یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ آواز آہستہ رکھو.
نہیں وہ تو کرنا ہی پڑے گا نا, آپ اتنے بڑے کیا بتانا چاہ رہے ہیں, کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ اتنا ہے کہ اور جس کو نماز پڑھنی ہے نا ویسے تو اس کو پھر لاؤڈ اسپیکر کی کہاں ضرورت ہے؟ اسے تو آج کل ڈیجیٹل, آج کل سارا سسٹم ہے موبائلوں کے اندر, اپنے آپ اذان ہو جاتی ہے, وقت کا اپنا آپ پتا ہوتا ہے. جسے نماز پڑھنی ہے وہ تو اپنے آپ ہی مسجد میں پہنچ جائے گا, اور جسے پڑھنی نہیں ہے وہ مسجد کے باہر بھی بیٹھا رہتا ہے.
سر میں تھوڑا تاریخ کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. اگر میں تاریخ کو دیکھوں, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا, یقیناً تاریخ تھوڑی بہت ہر ملک اپنے لحاظ سے, اور تاریخ ہمیشہ فاتح لکھا کرتے ہوتے ہیں. تاریخ کو اگر میں دیکھتی ہوں تو کچھ جو بھی اللہ نے وقت کا جس کو بھی طاقت دی تھی, یا جو وقت کا فرعون جس جس کو مقرر کیا تھا, برطانیہ میں باقاعدہ, اور اگر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں چلی جاؤں یا مختلف ادوار میں چلی جاؤں, تو بہت سے امام اور آئمہ جو تھے نا وہ گو کے مسلمان نہیں تھے, مگر برٹش میں, برطانیہ میں ایک خاص جگہ پہ باقاعدہ ان کو اسلام کی مکمل تربیت کر کے جو الحکما ہوتے تھے, حاکم ہوتے تھے وقت کے, وہ اپنے ذاتی مقاصد سے فتوے لیتے تھے. کیا آج کل کے دور میں بھی یہ چیز چل رہی ہے؟ کیا یو ڈونٹ تھنک سو؟
نہیں مجھے تو نہیں معلوم اس بارے میں کہ اس طرح کی کوئی چیز میرے سامنے.
اچھا
مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی ہندوستان میں آئی ہو, ایسا میرے سامنے نہیں ہے.
مگر ابھی ریسنٹلی ہندوستان میں قرآن پاک کا ایک نیا نسخہ نکلا تھا جس کو میں نے باقاعدہ ہم نے کور بھی کیا تھا. یہ نسخہ کیا تھا کہ جس میں یعنی ظاہر ہے یہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ 72 فرقے ہوں گے, بہت سے فرقے بنے گے. قرآن میں جب ان کا ذکر ہے تو ذکر ہے, ہر انسان اپنے اعمال کے لیے خود دیندار ہے. مگر یہ تھا کہ قرآن پاک کی ان تمام آیات کو نکال دیا گیا قرآن پاک میں, میرے پاس ریکارڈ ہے اس کا, جن میں جہاد کا ذکر تھا.
اچھا مجھے میرے علم میں نہیں ہے کس نے نکالا, یہ مجھے نہیں معلوم. نکال بھی سکتا کوئی, یہ بھی مجھے نہیں معلوم. یہ تو لوہے محفوظ میں ہے, یہ تو قرآن تو پھر اس میں تو کس.
اچھا آپ کے نوٹس میں ہی نہیں, حالانکہ یہ تو انٹرنیشنل نیوز تھی.
اچھا میرے نالج میں نہیں,
آپ کی نالج میں نہیں کہ قرآن پاک کا جو نیا نسخہ آیا ہے. شازیہ جی اگر آپ گوگل کر کے نکال لیں تو بڑی مہربانی ہوگی, کہ قرآن پاک کا جو نیا نسخہ وہاں سے انہوں نے تیار کیا, وہ بھی ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک نیا نسخہ تیار کیا گیا جس میں تمام ان آیات کو نکال دیا جن میں جہاد کا ذکر تھا.
کس نے نکالا یہ مجھے معلوم نہیں, کب ہوا ہے مجھے معلوم نہیں, کس کہاں
یہ سر تقریباً دو سال پہلے, ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے, انڈیا سے نکالا ابھی وہ, میں نے اپنے آفس کے اسٹاف ممبر سے کہا ہے کہ اگر اس کا مجھے فوری طور پہ وہ سرچ کر کے نکال کے دے دیں, کیونکہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں نے اس خبر کو کور کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اپنا, اگر میں آپ کا آخری خطبہ یاد کرتی ہوں, تو آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور آج کل کے دور میں بھی نارتھ امریکہ میں میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو فالو کرتے ہیں, ہم حدیث کو فالو نہیں کرتے. کچھ فرمائیں گے ان کے بارے میں؟
مجھے میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. ایسا
بہت بڑا گروپ ہے سر. اچھا, بہت بڑا گروپ ہے. جو
کیا مکمل مطلب آپ سوچے کہ قرآن اور اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جی
دونوں کو آپ الگ کر سکتے ہیں کیا؟
بالکل سوال ہی نہیں پیدا. میں نہیں کر سکتا,
کوئی بھی نہیں کر سکتا, اس کے بغیر تو ہوگا نہیں. مطلب حدیث, قرآن اور حدیث, تو یہ تو مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ٹھیک
سے مطلب انکار ہو گیا نا پھر تو.
ہاں,
کہ اگر وہ حدیثوں کا مطلب کیا ہے, حدیث کا معنی کیا ہے, حدیث پہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملات. بھائی آپ اگر حدیث کو نہیں مان رہے تو آپ
نامکمل ہیں,
آپ تو انکار ہے نا کہ آپ رسول کو بھی نہیں مان رہیں گے.
سر آپ کے پاس 500 کے قریب کتنے امامز ہیں؟
5 لاکھ ہاف ملین.
یہ جو اتنے فرقے بن گئے ہیں اسلام میں, یس وہ لیتے ہیں کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 72 فرقے بن جائیں گے, مگر جو اتنے فرقے بن گئے ہیں اور ہر فرقہ جو ہے, میں پاکستان کی بات کر سکتا ہوں, میں انڈیا کی مجھے اتنا پتہ
یاد ہے انڈیا سے,
مگر
ویسے تو سبھی بھارت کے حصہ ہیں, پاکستان کو بھی ہم اکھنڈ بھارت ہی مانتے ہیں.
نہیں سر, اکھنڈ ہوا کرتا تھا, جب ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو ہم انڈیپینڈنٹ ہیں.
ہم تو اب بھی,
آپ تو سر جو مرضی کہیں, آپ جو کہیں,
ہماری نگاہ میں ہم آج بھی پاکستان ہمارا حصہ ہے.
نہیں نہیں سر, کبھی نہیں ہو سکتا
کہ وہ بارڈر بن گئے.
نو سر, کبھی نہیں ہو سکتا.
پہلے تو اپنے ملک کو
سنبھالیں, ہم پہلے وہ آپ بتائیں. آپ کا سوال بہت اچھا تھا, کیا تھا وہ؟
پاکستان از این انڈیپینڈنٹ کنٹری.
میں آپ سے کہتا ہوں سر, آپ کے آپ اپنے انڈیا کو سنبھال لیں, کیونکہ اگر پاکستان کو لے لیا تو آپ کی بڑی مشکل آ جائے گی, تو ان کو نہیں سنبھال سکیں گے.
ہم تو دراصل لینے اور دینے کی تو ہے ہی ہمارے.
اچھا,
ہم اس پر کسی کو لینے اور دینے کی بات اس لیے نہیں کر رہے, چونکہ اکھنڈ بھارت کا کنسپٹ
کہنے میں کیا ہے سر؟
نہیں کہنے میں نہیں, حقیقت یہ ہے کہ اکھنڈ بھارت ہے ہمارا, تو اکھنڈ ہے وہ سب. بنگلہ دیش بھی ہمارا ہی ہے, پاکستان بھی ہمارا ہی ہے, افغانستان بھی ہمارا ہی ہے, نیپال بھی ہمارا ہی ہے.
ہمارا بھی کہنا یہ اتفاق سے, پتا ہے میں آپ کو بتاؤں
جی,
کہ ہمارا بھی اکھنڈ پاکستان میں نا, تو انڈیا بھی ہمارا ہے,
کشمیر, انڈیا ہمارا ہے, کشمیر بھی ہمارا
ہے, یہ پارٹ ہے ہمارے سب. بھارت کا
سر, انڈیا بھی ہمارا ہے, آپ کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, انڈیا بھی میرا ہے, کشمیر بھی میرا ہے.
نہیں نہیں, کشمیر اور پاکستان یہ سب ہمارے بھارت ہے, یہ بھارت کا ابھین انگ ہے کشمیر تو میرا. ہم تو دیکھیے,
ہمارا تو اپنا انگ ہے کشمیر بھی اور بھارت بھی.
بارے میں کیا ہے,
بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ بس اس کو یہ ہے کہ اکھنڈ بھارت ہے, سب ہمارا ہی ہے, سب بھارت کا ہی ہے.
سر آپ یہ الفاظ اپنا واپس لیں گے, یہ الفاظ آپ اپنا واپس لیں گے؟ نو,
ہمارا ہی ہے, کیونکہ ہمارا ہی رہے گا.
بدقسمتی سے انڈیا کے ہر مسلمان کو آپ کی گورنمنٹ, یہ میں پولیٹیکل پروگرام بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی, آپ نے یہ لفظ کہہ کے میری اور میرے ساتھ بے شمار پاکستانیوں کے جذبات کو ہرٹ کیا ہے, کیونکہ ایک آزاد ریاست کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے.
نہیں,
اکھنڈ بھارت, میں اکھنڈ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں.
بہرحال
آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جو مرضی گئے,
اسی کے جواب میں نے آپ سے کہا نا سر, بڑے اچھے الفاظ میں نے کہا کہ ہمارا بھی پاکستان میں اکھنڈ پاکستان ہے, جس کے اندر ہم نے انڈیا کو شامل کیا ہے, جس کے اندر ہم نے اور جتنے بھی اس قریب کے ملک ہیں نا, ان تمام کو شامل کر لیا.
چھوٹی سی بات ہے, بھارت جو بھارت ہے جس سے سب نکلے ہیں وہ بات ہے. پاکستان سے
وہ ایک شیر ہے, وہ ایک شیر میں آپ کو ایک میں آپ کو شیر بتا دیتی ہوں.
ماں ہے وہ تو بھارت ہے نا, آپ بھارت جو ہے, بھارت ماں
گاندھی
ماں سے جو نکلا ہے وہ یہ اس کے جنم بچے ہیں, یہ جو بھارت کے نکلے بچے ہیں हैं, पाकिस्तान भी बच्चा है, बांग्लादेश भी हमारा बच्चा है, ये सब हमारे बच्चे हैं।
बड़ी आपने खूबसूरत, नहीं
नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि आपको वापस इंडिया जाना है,
बात ये नहीं है,
वरना इंडिया आके नरेंद्र मोदी तो आपको जाने ही नहीं देंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि पाकिस्तान इंडिया का बच्चा है, आपको पता है माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, इंडिया में तो किसी बंदे को जरा सा होता है तो वो कहते हैं इसको पाकिस्तान भेज दो, मतलब वो तो गाली तसव्वुर करते हैं।
मैं इस बारे में यही कहना चाह रहा हूँ कि हमें सबको, देखिए एक जमाना था, आप अगर आपको याद होगा कि एक जमाने में तो बॉर्डर्स भी नहीं हुआ करते थे,
बस सर वो फिर जब से आरएसएस ने अपने एजेंडे को स्ट्रांग कर लिया
तो मतलब जो है सारी दुनिया एक ही थी, मतलब ये तो
वी शुड नॉट मेक इट अ पॉलिटिकल प्रोग्राम, वी शुड नॉट मेक इट अ पॉलिटिकल प्रोग्राम।
एक सवाल कर रहे थे आप, बहुत अच्छा सवाल था,
मैं आपसे पूछना चाह रहा था ये कि जितने इतने फिरके, तो हमने एक एक्सक्यूज ले लिया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उन्होंने कहा था कि जी 72 फिरके होंगे, तो फिरके हैं, तो यहां तक कि मैं अपने इंडिया का मुझे नहीं मालूम, हालांकि मालूम है, डिस्कस नहीं करना चाह रहा इंडिया का, पाकिस्तान में ये है कि इतनी नफरत है आपस में कि नहीं ये शाफेई है, ये
सर इंडिया में भी है
ना, हर जगह, तो ये मैं इंडिया का जिक्र नहीं करना चाह रहा, मैं यहां तक कि कनाडा में भी शामिल कर दिया गया ये चीज कि ये जब मसाजिद के जब लिखे जाते हैं तो वो उसमें लिखा जाता है कि ये हनफी की मस्जिद है, या ये शाफेई की मस्जिद है, या ये शियाओं की मस्जिद है, या ये इनकी, तो ये चीज है, ये आप लोग क्या, क्योंकि आप लोग सारे आलिम हैं, सारे इल्म रखने वाले हैं, तो आप लोग इस पर कुछ काम कर सकते हैं किसी तरह?
देखिए काम तो करना ये चाहिए था, हमारी बहन ने जो बात कही बारी